ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार की गई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही।
9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की।
आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, BSF के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि उभरते सैन्य हालात पर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये संधि इसकी प्रस्तावना के अनुरूप सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 91% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो लड़कों के मुकाबले 5.94% अधिक है। ट्रांसजेंडर छात्रों ने 100% सफलता हासिल की। इस वर्ष कुल 16,92,794 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम छात्रों के संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचायक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं और 10वीं कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कामना की कि विद्यार्थी इसी तरह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थियों को इस बार मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाया है, उनसे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पूरी निष्ठा के साथ फिर से प्रयास करें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने संचयी अंक सुधार योजना के तहत कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त न करने वाले छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का अवसर देना है। इसके तहत जो छात्र बीते सेमेस्टर परीक्षाओं में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर सके, वो अपने अंकों में सुधार के लिए इन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सम्मान में आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट सहयोगी और दिल्ली के संसद सदस्य शामिल हुए। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशवासियों के लिए गर्व की बात है।
आज 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती है और दिल्ली और देश उन्हें बताना चाहता है कि पूरा देश एकजुट है, सशक्त है और अपनी लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली के लोग सशस्त्र बलों के समर्थन में अपने घरों से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि देश एकजुट है और देश की सेना पाकिस्तान के किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है।
ये बात स्पष्ट है कि देश पूरी तरीके से एकजुट है। देश के ऊपर अगर कोई भी अभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है। सुश्री स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी है।
वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म बिल्कुल जारी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा।
दिल्ली विधानसभा परिसर को एक जीवंत धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर एक ऐतिहासिक पहल के लिए सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया है।
इस पत्र में श्री गुप्ता ने 1912 में निर्मित विधानसभा परिसर को राजधानी की लोकतांत्रिक विरासत का उत्सव मनाने वाले धरोहर स्थल में बदलने का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष के प्रस्ताव में भवन की मूल वास्तुकला का संरक्षण और पुनर्स्थापन, दिल्ली की विधायी और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दर्शाने वाला एक विधायी संग्रहालय और प्रदर्शनी की स्थापना, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, गाइडेड टूर, स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से परिसर को जीवंत बनाना शामिल है। श्री गुप्ता ने पत्र में कहा कि ये पहल दिल्ली की लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित और सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर का धरोहर केंद्र के रूप में रूपांतरण न केवल अतीत को सम्मान देगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत भी बनेगा। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मुदिता।
राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये सुविधा शुरू की गई थी।
नव स्थापित यूनिट में फिलहाल 8 बेड की व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक संबंधित मरीजों के शरीर का तापमान तुरंत कम करने के लिए टब, बर्फ बनाने की मशीन और अन्य जरूरी उपकरण लगाए गए हैं। बर्फ बनाने वाली मशीन से प्रतिदिन 300 किलो से अधिक बर्फ तैयार की जा सकती है जो इलाज में उपयोग की जाएगी। हीट स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। ऐसे में शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाना जरूरी होता है वरना यह जानलेवा साबित हो सकता है। यूनिट के विशेष टब में 50 किलो बर्फ से भरे पानी का उपयोग किया जाएगा जिसके माध्यम से शारीरिक तापमान को तुरंत कम किया जा सके। इस नई सुविधा से हीट स्ट्रोक के मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से कुल 478 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुए। इस बरामदगी पर NDPC अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज 2 आरोपियों को करीब 28 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हाल ही में इस कारोबार में शामिल हुए थे और दिल्ली में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 20 वर्ष पुराने उस जटिल मुद्दे को सुलझा लिया है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज वोटरों को गलती से एक जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों ने 2005 से ही अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा सीटों के अनुसार अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये फोटो पहचान पत्र जारी किए थे। जांच में पाया गया कि समान नंबर के फोटो पहचान पत्र वाले ये सभी मतदाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों में वास्तविक मतदाता थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने समापन की ओर हैं, जिसमें आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। एक रिपोर्ट।
महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र की ही अनुष्का पाटिल ने रजत पदक जीता जबकि महाराष्ट्र की ही सारा राहुल ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं रिदमिक जिम्नास्टिक्स की क्लब स्पर्धा में महाराष्ट्र की सुभाश्री ने स्वर्ण पदक जीता जबकि महाराष्ट्र की ही परीना ने रजत पदक जीता। परीना खेलो इंडिया के इस संस्करण में अब तक 5 पदक जीत चुकी हैं जिसमें 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक हैं। इस स्पर्धा में हरियाणा की मिशिका ने कांस्य पदक हासिल किया। रिदमिक जिम्नास्टिक्स हूफ फाइनल में महाराष्ट्र की परीना ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली की रचेल दीप ने रजत पदक जीता जबकि महाराष्ट्र की दिवांगी हर्षल पवार ने कांस्य पदक हासिल किया। बॉल फाइनल में महाराष्ट्र की किमाया कार्ली ने स्वर्ण पदक जीता। परीना इस करीबी मुकाबले में स्वर्ण पदक से चूक गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस श्रेणी में रचेल दीप ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय राजधानी में आज हुई जिम्नास्टिक्स की स्पर्धाओं में महाराष्ट्र का दबदबा रहा। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब बात मौसम की। राजधानी में आज हल्की बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है, भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।